ये आकाशवाणी दिल्ली है। मुख्य समाचार। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पीतमपुरा में नवनिर्मित सड़कें, सीवर लाइन और स्ट्रीट लाइट्स का लोकार्पण किया। दिल्ली सरकार ने कांवड़ समितियों के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 10 जुलाई की। दिल्ली के करोलबाग क्षेत्र में एक शॉपिंग मॉल में आग लगने से 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और भारतीय शिल्प संस्थान जयपुर द्वारा राजधानी के राजीव गांधी भारतीय हस्तशिल्प भवन में देश के विभिन्न हिस्सों से शिल्प उद्यमियों ने अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज शहर के पीतमपुरा इलाके के वीपी ब्लॉक और सीपी ब्लॉक में नवनिर्मित सड़कों और बीयू ब्लॉक में नई सीवर लाइन और स्ट्रीट लाइट्स का लोकार्पण कर उन्हें क्षेत्र की जनता को समर्पित किया। इसके बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सुगम आवागमन, प्रभावी जल निकासी और रात्रिकालीन सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में ये एक सशक्त और संवेदनशील पहल है। उन्होंने कहा कि हर कॉलोनी की जरूरत को समझना, हर समस्या का स्थायी समाधान खोजना और हर नागरिक को एक सुविधाजनक, सुरक्षित और गरिमामय जीवन देना दिल्ली सरकार की प्रतिबद्धता है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सरकार ने दिल्ली जल बोर्ड के वित्तीय अधिकारों को बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि अब बोर्ड करोड़ों रुपए की लागत वाली परियोजनाओं को स्वयं ही पूरा करेगा, जिनमें यमुना का शुद्धिकरण, नालों के पानी का ट्रीटमेंट, नियमित पेयजल आपूर्ति जैसे महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं। श्रीमती गुप्ता के अनुसार ऐसी परियोजनाओं को अब कैबिनेट में लाने की आवश्यकता नहीं होगी। नए निर्णय में जल बोर्ड के अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के वित्तीय अधिकारों में भी बढ़ोतरी कर दी गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्पष्ट किया कि बोर्ड की शक्तियों में ये बढ़ोतरी शासन प्रणाली को अधिक सक्षम, प्रभावी और उत्तरदायी बनाने के उद्देश्य से की गई है। दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज अपने विधानसभा क्षेत्र राजौरी गार्डन में सड़कों के नवनिर्माण के कार्य का शुभारंभ किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिरसा ने क्षेत्रवासियों को बधाई देते हुए कहा कि ये सभी विकास कार्य मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की वजह से संभव हो पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के सहयोग और मार्गदर्शन से ही आज विकसित दिल्ली का संकल्प पूरा हो रहा है और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि भारत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से आगे बढ़कर अब बेटी बढ़ाओ पर पहुंच चुका है। राजधानी के रामजस कॉलेज में आज अपने एक संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के निरंतर प्रयासों से अब बाल भ्रूण हत्या के मामले काफी कम हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि समाज में महिलाओं और लड़कियों की साक्षरता में काफी बढ़ोतरी हुई है और अब अधिकांश महिलाएं उच्च नेतृत्व की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं।
एक क्वालिटी है महिलाओं की कि स्थिति कुछ भी हो, ना डरना है और ना ही घबराना। आज अक्सर हम नहीं सुनते कि किसी ने उस तरीके की भ्रूण हत्या की हो जो पहले के जमाने में होती। आज वो फेज निकल गया है। उसके बाद आया बेटी पढ़ाओ। बेटी पढ़ाई ना होती तो इतनी सारी प्रोफेसर यहाँ कैसे बैठी होती, ये प्रिंसिपल लोग कैसे बैठी होती।
मुख्यमंत्री ने बताया कि वे अपने कार्यों से समाज में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, जिसके कारण उनके ऊपर राजधानी को चलाने की जिम्मेदारी और भी महत्वपूर्ण हो गई है। दिल्ली सरकार ने कांवड़ समितियों के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 10 जुलाई कर दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि कई कांवड़ समितियां विभिन्न कारणों से अपना आवेदन समय पर जमा नहीं कर सकी थीं, जिसकी वजह से यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि सभी समितियों को उचित प्रशासनिक एवं वित्तीय सहयोग मिल सके। कांवड़ समितियों के लिए आवेदन जमा करने की प्रक्रिया प्रतिदिन सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक संचालित की जा रही है। इसके लिए संबंधित जिलों में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट की निगरानी में सिंगल विंडो सिस्टम स्थापित किया गया है, जिसके माध्यम से सभी आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र और विभागीय अनुमतियां 72 घंटे के भीतर जारी की जा रही हैं। दिल्ली पुलिस के संयुक्त आयुक्त संजय कुमार जैन ने कहा है कि इस महीने की 11 तारीख से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने सभी तैयारियां की हैं। आज नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए श्री जैन ने बताया कि इस संबंध में पुलिस के सभी स्थानाध्यक्षों, उपायुक्तों सहित अन्य अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC द्वारा आयोजित 2 दिवसीय आम महोत्सव खास आम आज से राजधानी दिल्ली के चाणक्यपुर स्थित पालिका सेवा अधिकारी संस्थान में शुरू हो गया। NDMC के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने आज इस महोत्सव का उद्घाटन किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस महोत्सव में 515 किस्म के आम प्रदर्शित किए जा रहे हैं।
आम महोत्सव में 2 सरकारी आम अनुसंधान संस्थान, 10 आम उत्पादक किसान और 25 आम विक्रेता अपना स्टॉल लगाएंगे। महोत्सव में अरुणिका, अंबिका, लंगड़ा, लखनऊ सफेदा, गुलाब खास, दशहरी, आम्रपाली, मलिका और चौसा जैसे 300 से अधिक आमों की किस्में प्रदर्शित की जाएंगी। महोत्सव में किसानों, कोऑपरेटिव सोसाइटियों और प्रमुख रेस्तरां और होटल द्वारा आम से बने व्यंजनों और उत्पादों के 10 विशेष स्टॉल भी लगाए जाएंगे। इस आम महोत्सव में आगंतुकों के लिए विभिन्न मनोरंजन गतिविधियां होंगी और आम के किस्मों के पौधे के नमूने भी बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे। NDMC के सचिव कृष्ण कुमार ने बताया कि यह आम महोत्सव भारत की समृद्ध कृषि विविधता का उत्सव मनाने और समुदायों को एक साथ लाने का एक अनूठा अवसर होगा।
विकसित भारत की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ का फार्मर भी विकसित होता दिख रहा है और नेशनल से लेकर इंटरनेशनल प्रजातियों को भी किस अच्छे ढंग से किस ऑर्गेनिक फार्मिंग के भी कुछ अलग प्रोविजन इन्होंने करे हैं। और जब मैं सिंह साहब से बात कर रहा था, जो प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं सबके, तो उन्होंने से बातचीत में एक चीज ध्यान आई कि संस्था आने वाले दिनों में एक प्रजाति का सिंदूर नाम रखकर भी, सिंदूरी भी नाम है, दशहरी, लंगड़ा, केसर, रफूज हम सुनते रहे हैं, पर एक प्रजाति का नाम सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर से रखकर भी आगे शुरू करने वाले हैं।
2 दिवसीय ये महोत्सव दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक चलेगा। सकलैन अख्तर।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली के करोलबाग क्षेत्र में एक मेगामार्ट में बीती शाम लगी आग में 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। दिल्ली अग्निशमन विभाग के अधिकारी रविनाथ ने मीडिया से बातचीत में कहा कि इस घटना की सूचना उन्हें कल शाम 6:44 पर प्राप्त हुई थी, जिसके बाद मौके पर उनकी टीम आग बुझाने के लिए पहुंची। उन्होंने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है और कूलिंग का कार्य जारी है।
ये कॉल कल शाम में 6:44 में कॉल लगा था, फायर हुई थी यहाँ पे, विशाल मेगावाट में फायर है, इसकी कॉल मिली थी। फिर हमारे टीम यहाँ मौके पे आया, मौके पे आने के बाद उन्होंने देखा कि फायर ज्यादा है, तो फिर इस कॉल को कैटेगरी को अप कर दिया गया, मीडियम फायर किया गया था। लगभग 9:15 में मीडियम फायर किया गया था। उसके बाद फिर रात में सर्च के दौरान लगभग 2 बजे के आसपास इसमें कैजुअल्टी मिला एक, और आग जो है अभी अंडर कंट्रोल है।
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक कुख्यात गैंग के 2 सदस्यों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की स्पेशल सेल के उपायुक्त अमित कौशिक ने मीडिया से जानकारी साझा करते हुए कहा कि उन्हें सूचना प्राप्त हुई थी कि दोनों आरोपी शहर के नरेला इलाके में आ सकते हैं। श्री कौशिक ने बताया कि जब पुलिस ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो आरोपियों ने पुलिस पर गोली चला दी, जिसके बाद पुलिस ने भी आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। उपभोक्ता मामले विभाग और भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने देश भर के उपभोक्ताओं से केवल BIS प्रमाणित हेलमेट का ही उपयोग करने की अपील की है। विभाग ने BIS प्रमाणन के बिना हेलमेट के निर्माण या बिक्री के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भी आह्वान किया है। उपभोक्ता मामले विभाग ने कहा है कि भारतीय मानक ब्यूरो ने पिछले वित्तीय वर्ष में BIS मानक चिन्ह के दुरुपयोग के लिए 30 से अधिक तलाशी और जब्ती अभियान चलाए। दिल्ली में 9 निर्माताओं से 2,500 से अधिक गैर अनुपालन वाले हेलमेट जब्त किए गए। इनके लाइसेंस भी समाप्त हो चुके थे या रद्द कर दिए गए थे। देश में 21 करोड़ से अधिक दोपहिया वाहन चालकों की सुरक्षा सर्वोपरि है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने अपनी शर्तों पर व्यापार समझौतों पर चर्चा की है और किसी समय सीमा के आधार पर कोई व्यापार समझौता नहीं किया। अमेरिका के साथ व्यापार समझौते के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि मुक्त व्यापार समझौता केवल तभी होता है जब वो दोनों पक्षों के लिए लाभप्रद हो। उन्होंने कहा कि कोई देश व्यापार समझौता तभी स्वीकार करता है जब वो पूरी तरह से परिपक्व और राष्ट्रीय हित में हो। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। भारतीय शिल्प संस्थान IICD जयपुर द्वारा आज राजधानी के राजीव गांधी भारतीय हस्तशिल्प भवन में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में देश भर के अलग अलग हिस्सों के शिल्प उद्यमियों ने अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए IICD की निदेशिका तुलिका गुप्ता ने बताया कि क्राफ्ट बिजनेस एक्सेलरेटर कार्यक्रम के तहत शिल्प उद्यमियों को प्रशिक्षण दिया गया है, जिसमें उत्पादों को बेहतर बनाने के साथ साथ उन्हें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवसर प्रदान करना शामिल है।
यहाँ पे दिल्ली में जहाँ शोकेस किया है, ये भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के DCH यानी कि ऑफिस ऑफ डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडीक्राफ्ट्स के अंडर आती है ये जगह। वी आर ग्रेटफुल कि उन्होंने ये हमें ऑफर किया और यहाँ पे हम ये प्रोग्राम रन कर रहे हैं, जिसमें कोई भी इन्वेस्टर्स आ सकते हैं, कोई बायर्स आ सकते हैं। और साढ़े चार मंथ का ये प्रोग्राम, जो 12 कोहॉर्ट का नंबर है, इन लोगों को ये ट्रेनिंग दी गई कि भाई आप अपने बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाएं, तो उसके लिए ये प्रोग्राम आज यहाँ किया जा रहा है।
प्रदर्शनी में अपने उत्पादों का प्रदर्शन कर रहे गुजरात के हस्तशिल्प कलाकार राजन बनकर ने कार्यक्रम के प्रशिक्षण को लेकर आकाशवाणी समाचार से अपने अनुभव साझा किए।
क्राफ्ट बिजनेस एक्सेलरेटर प्रोग्राम ज्वाइन किया था, जो IICD कॉलेज और कालाज फाउंडेशन भारत सरकार इनके द्वारा ये आयोजित किया हुआ था। मुझे काफी कुछ सीखने को मिला, मार्केटिंग ब्रांडिंग के, कैसे हम इसको और स्केल अप कर सकते हैं। फिर ये कम्प्लीट करने के बाद हमें काफी उम्मीदें हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में हमें ग्रोथ मिलेगी।
एक अन्य प्रदर्शक आमाक्षी रावत ने इस कार्यक्रम के लिए सरकार का धन्यवाद व्यक्त किया।
जहाँ पर हम लोगों ने विलेज वेमेन को ट्रेन कर एंड उनके थ्रू हम लोगों ने अपने प्रोडक्ट्स डिस्प्ले कर रहे हैं यहाँ पर, एंड थ्रू दिस प्रोग्राम जो IICD के द्वारा हमारे को प्रोवाइड करा गया है, सो ये हमारे को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है और साथ में हमारे को एक नेटवर्किंग एसोसिएशन एज वेल एज आर्टिसंस के साथ मोर कोलैबोरेशन करने का मौका दे रहा है।
इनोवेटिव फिजिशियन फोरम का 7वां वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आज नई दिल्ली में आयोजित किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री बिरला ने चिकित्सा शिक्षा, अनुसंधान और वैश्विक सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने उभरते भारत की स्वास्थ्य नीति और चिकित्सा परिदृश्य पर भी प्रकाश डाला।
ये फोरम चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर जो नए अनुसंधान हो रहे हैं, नए रिसर्च हो रहे हैं, नए इनोवेशन कर रहे हैं और AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से किस तरीके से हम बेहतर चिकित्सा व्यवस्था कर सकते हैं और वर्तमान और भावी चिकित्सा के क्षेत्र में आने वाली नई चुनौतियों का समाधान और उसकी बीमारी के लिए नया क्या अनुसंधान के लिए प्रयास कर सकते हैं, इसका एक मंच है।
दिल्ली नगर निगम ने करदाताओं को सुविधा प्रदान करने के लिए 12 जोन में अब तक 1,862 संपत्ति कर शिविरों का आयोजन किया है। निगम ने बताया कि इन शिविरों में नागरिकों को संपत्ति कर दाखिल करने और कर माफी योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने में सहायता प्रदान की जा रही है। दिल्ली नगर निगम के अनुसार आने वाले दिनों में और अधिक संपत्ति कर शिविरों का आयोजन किया जाएगा, ताकि पात्र करदाता संपत्ति कर निपटान योजना का पूरा लाभ उठा सकें। इसके अलावा करदाताओं की सुविधा के लिए निगम ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए एक मुश्त संपत्ति कर भुगतान पर 10% की छूट की अंतिम तिथि इस महीने की 31 तारीख तक बढ़ा दी है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने अवैध रूप से लोगों को भारत से अमरीका और अन्य देशों में भेजने के मामले में शामिल 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में 2 ठिकानों पर तलाशी के बाद इन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। NIA ने बताया कि एक आरोपी ने पीड़ितों को गैर कानूनी तरीके से विदेश भेजने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जबकि दूसरा आरोपी लातिन अमरीका में एजेंटों को धन हस्तांतरित करने में शामिल था। एजेंसी ने बताया कि दोनों आरोपी इस वर्ष मार्च में गिरफ्तार किए गए मुख्य आरोपी गगनदीप सिंह के नजदीकी सहयोगी हैं। गगनदीप सिंह को एक पीड़ित की शिकायत के बाद गिरफ्तार किया गया था। पीड़ित व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से अमरीका भेजा गया था। और अब बात मौसम की। राजधानी दिल्ली के कुछ इलाकों में आज हल्की बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान 37.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 27.9 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान बादल छाए रहने और बिजली कड़कने के साथ हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पीतमपुरा में नवनिर्मित सड़कें, सीवर लाइन और स्ट्रीट लाइट्स का लोकार्पण किया। दिल्ली सरकार ने कांवड़ समितियों के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 10 जुलाई कर दिया है। दिल्ली के करोल बाग क्षेत्र में एक शॉपिंग मॉल में आग लगने से दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और भारतीय शिल्प संस्थान जयपुर द्वारा राजधानी के राजीव गांधी भारतीय हस्तशिल्प भवन में देश के विभिन्न हिस्सों से शिल्प उद्यमियों ने अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।